श्री श्री राधा बिंदन चंद्र की जय। जगन्नाथ वल्ली सुभद्रा सुदर्शन महाराज की जय। श्री श्री कौनिताय की जय। श्री वेंकटेश बालाजी भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज आविर्भाव महामहातिथि की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरीवर धारी जय गोपी जय यशोदानन्दन जय ब्रज जनरञ्जन जय यमुनातिरवनचारि जय कुंज बिहारि जय यमुनातिरवनचारि जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरीवर धारि जय यशोदानन्दन जय ब्रज जनरञ्जन जय राधा माधव जय कुंज बिहारि जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारि जय జయ యమునతి అగణచారి జయ కుంజ విహారి జయ రాధ మాధవ జయ కుంజ విహారి జయ హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ హరి రామ 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 హరి 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 కృష్ణ హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ రి రామ 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 హరి 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 కృష్ణ హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ హరి రామ 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 హరి 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 కృష్ణ హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ హరి రామ 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 హరి 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 ప్రభు పద జయ ప్రభు పద ప్రభు పద గురు దివా జయ గురు దివా తై గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితై గౌర హరి బోల్ హరిరామ సంకీర్తన కీ జయ శీల ప్రభుపాద కీ జయ గంత్రా శ్రీమద్ భాగవత అమల్ పురాణ కీ జయ గోపాల్ భట్ గోస్వామీ తిరవా మహామహోత్సవ కీ జయ నితాయ గౌర హరి ప్రేమానందీ హరి హరి ఓం. ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. హరి కృష్ణ. ఆజ్ హమ్ పాఠ్ కర్ రహే హై శ్రీమద్ భాగవత్ సే స్కంద 5 अध्याय 2 श्लोक नंबर 2 और 3. इस अध्याय का शीर्षक है महाराज अग्निधा की चरित्र। तो पहले दो नंबर श्लोक का हम पाठ करेंगे, उसके बाद तीसरा नंबर श्लोक से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। स च कदाचित् पितृलोका कामश्रवरवानिता आक्राचलं द्रोणायं भगवन्तं विश्वसिजं पतिम् अवित्त परिचारे उपकारण आत्मा एक अच्छिन्न तपस्वी आधयम् बभवो। इसका अनुवाद। एक बार महाराज अग्निधर ने स्वयं पुत्र प्राप्त करने तथा पितृलोक का वासी बनने की कामना से भौतिक सृष्टि के स्वामी भगवान ब्रह्मा की आराधना की। वे मंद्राचल की घाटी में गए जहाँ स्वर्गलोक की सुंदरिया विहार करने आती है। वहाँ उन्होंने वाटिका से फूल तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की और फिर कठिन तप तथा उपासना में लग गए। तात्पर्य, राजा पितृलोक का कामा अर्थात पितृलोक में जाने की इच्छुक हो गए। पितृलोक का उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। अंति देव बता देवन पित्रंति अंति पित्र देवा पित्र बता। इस लोक में जाने के लिए उत्तम पुत्र होने चाहिए जो भगवान विष्णु को भेंट चढ़ाने के पश्चात जो कुछ बचे उसे अपने पितरों पूर्वजों को चढ़ाए। सात संस्कार का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, जिससे उनके प्रसन्न होने के बाद जो प्रसाद बचे उसे अपने पितरों को दिया जा सके, जिससे वे प्रसन्न हो। पितृलोक के वासी प्राय कर्मकांडी होते हैं और अपने पुण्य कर्म के कारण वहां भेजे गए होते हैं। वे वहां तब तक रहते हैं जब तक उनके वंश उन्हें विष्णु प्रसाद भेंट करते रहते हैं। किंतु पितृलोक के प्रत्येक प्राणी को पुण्य कर्म के फलों से सही होने पर इस पृथ्वी में वापस आना पड़ता है, जैसा कि भगवद गीता में 9.21 में पुष्टि की गई है। सीने पुण्य मृत्युलोकम विशांति। जो पुरुष पूर्ण कर्म करते हैं वे स्वर्ग भेजे जाते हैं, किंतु जब उनके पूर्ण कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो वे पुनः पृथ्वी पर वापस भेज दिए जाते हैं। क्योंकि महाराज प्रियव्रत परम भक्त थे, अतः उनसे ऐसा पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ होगा जो पितरों भेजे जाने का कामी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पितरन अंति पित्र बता। जो व्यक्ति पितृलोक जाना चाहते हैं उन्हें वहां भेज दिया जाता है। इसी प्रकार अंति मध्यजी अनि अपि मम। जो पुरुष वैकुंठ लोक जाना चाहते हैं अभी वहां जा सकते हैं, क्योंकि महाराज महाराज अग्निधा के वैष्णव पुत्र थे, एक वैष्णव पुत्र थे तथा उन्होंने वैकुंठ लोक जाने की कामना की होगी, तो फिर वे पितृलोक में क्यों जाना चाहते थे। इसके उत्तर में भागवत के एक टीकाकार गोस्वामी गिरिधर की टिप्पणी है कि कि अग्निधर उस समय उत्पन्न हुए थे जब महाराज प्रेवत अत्यंत काम आसक्त थे। इसे तत्व के रूप में ग्रहण किया जा सकता है क्योंकि गर्भ अवस्था में अवस्था के समय जैसी मनोवृत्ति होती है उसी के अनुरूप अनुकूल पुत्र उत्पन्न होते हैं। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार पितृ उत्पत्ति के पूर्व गर्भधान संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से पिता की मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि जब वो अपनी पत्नी के गर्भ में वीर स्थापित करता है तो उससे ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है जिसका मन भक्ति से उत्पन्न हो, किंतु संपत्ति ऐसा गर्भधान संस्कार नहीं है। अथा जब पुरुषों में काम वासना रहती है तभी संतान उत्पन्न होती है। विशेष रूप से इस कलयुग में कोई गर्भधान संस्कार नहीं रह गया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कुत्तों तथा बिल्लियों जैसे संभव करता है। अथा वैदिक आदर्शों के अनुसार इस युग के सभी व्यक्ति प्राय सूत्र कोटि के हैं। निसंदेह पितृलोक में भेजे जाने की कामना के पीछे महाराज अग्निधर की मनोवृत्ति शूद्र की सी नहीं थी, वे क्षत्रिय थे। महाराज अग्निधर की इच्छा थी कि वे पितृलोक जाए, इसलिए उन्हें पत्नी की आवश्यकता हुई क्योंकि पितृलोक के इच्छुक पुरुष को अपने पीछे उत्तम पुत्र छोड़ जाना चाहिए जो प्रति वर्ष भगवान विष्णु से प्रसाद या पिंड उसे प्रदान करता रहे। उत्तम पुत्र पाने के लिए ही महाराज अग्निदेव ने देवकुल की पत्नी चाही थी। अथा वे ब्रह्मा के आराधन हेतु मंदिर चल गए जहाँ सामान्य रूप से देव की स्त्रियां आती है। भगवद गीता में 4:12 में कहा गया है कंक्षंत कर्मनाम सिद्धि अजंत यह देवता। जो भौतिकतावादी इस संसार में शीघ्री फल चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत से भी होती है। जो पुरुष सुंदर पत्नी प्रचुर धन तथा अनेक पुत्र की कामना करते हैं वो देवताओं को पूछते हैं, किंतु बुद्धिमान भक्त तो इन सब की कामना नहीं करता। वह भगवान के धाम को तुरंत वापस जाना चाहते हैं। इस प्रकार वह भगवान विष्णु की उपासना करता है। मैं इसलिए पढ़ा, इसको बहुत बड़ा पार्पट है क्योंकि प्रभुपाद के वाणी है ना, इसलिए हमने इसको दोहराया। तो अभी तीसरा श्लोक हम पाठ करेंगे। मैं केवल पाठ कर लेता हूँ क्योंकि समय कम है और आज गोपाल वाट गोस्वामी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तत् उपलब्ध भगवान आदि पुरुष दत्सी सत्सी गायंतिम पूर्व चित्तिम नाम अप्सरा सम अभियापयम अश। इसका शब्द अर्थ इस प्रकार है, आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। तत् ओहा उपलब्ध समझकर भगवान सर्वशक्तिमान आदि पुरुष इस ब्रह्मांड की उत्पन्न पहले जीव सत सत्सी सभा में गायंतिम नर्तकी पूर्व चित्तिम पूर्व चित्ती नाम नामक अप्सरा समा सर्ग की नर्तकी अप्सरा को अभी आप एम आशा नीचे भेजा। इसका अनुवाद तत्र भाई चरणी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान तथा आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा ने राजा अग्निदेव की अभिलाषा जानकर अपनी सभा की शिष्ट अप्सरा को जिसका नाम पूर्व चित्ती था चुनकर राजा के पास भेजा। तात्पर्य इस श्लोक में भगवान आदि पुरुष शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तमम यामी भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है। भगवद गीता में अर्जुन ने उन्हें पुरुषम अद्वम कहकर संबोधित किया है। ये भगवान कहे जाते हैं किंतु इस श्लोक में ब्रह्मा को भगवान आदि पुरुष पुरुषा कहा गया है। भगवान कहने का कारण ये है कि ये भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव है। ब्रह्मा जी महाराज अग्निदेव की अभिलाषा जान गए क्योंकि वे भगवान विष्णु के समान ही शक्तिमान है। जिस प्रकार परमात्मा पद पर स्थित भगवान विष्णु जीवात्मा की अभिलाषा को जान लेते हैं इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी जान लेते हैं क्योंकि विष्णु उन्हें सूचित करने में माध्यम है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1.1.1 में कहा गया है तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवाए। भगवान विष्णु अपने मन की पत्ते की बात ब्रह्मा को बता देते हैं क्योंकि महाराज अग्निदेव ने ब्रह्मा जी की विशेष आराधना की अथवा वे उन पर परम प्रसन्न हुए और उनको संतुष्टि करने के लिए उन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा भेज दी। ज्ञानांजना शलाकाय चक्षुरोन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितनेन भूतले स्वयं रूपा कथामयं ददाति सापदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुक्ता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परियना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्री विशाखावितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनैव वैष्णवैः। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित सारे शुद्ध भक्त मध्यम और उत्तम कनिष्ठ और एक नए भक्त हैं मैं सबकी चरण में दंडवत प्रणाम करता हूँ आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूं। मैं आज यहाँ पे प्रवचन नहीं दे रहा हूं। मैं भगवद गीता में कहते ना मच्चित्त मत्कत प्राण बतस्त परस्परम। तो मैं थोड़ा आप लोग के साथ चर्चा कर रहा हूं। पहली बार यहाँ पर मुझे इस अवसर मिला है। अचानक कल शाम को करीब 8-9 बजे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, जगन्नाथ बलि सुभद्रा सुदर्शन महाराज की जय, गौर निताय की जय। अचानक कल रात को 8-9 बजे मेरे सर पे विस्फोट हो गया है। तो खैर ये तो भक्त की एक आशीर्वाद है, सेवा का अवसर है। तो मैंने अपने सिरदाय किया, वरिष्ठ भक्त हमारे श्रीपाद रूप गोस्वामी प्रभु जी, उन्होंने हमें कहा, मैंने आज्ञा पालन की। तो मेरे कहने पर जो भी टूटी हो भूल हो क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत पतित हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन सेवा का अवसर के कारण, खुद की शुद्धि कारण के कारण बैठा हूँ। और आज बहुत शुभ दिन है, षट गोस्वामी से जो महान एक आचार्य है गोपाल भट्ट जी का आज तिरुभाव दिन है, तो उनके बारे में भी थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। समय तो बहुत कम है लेकिन कथा लंबा है। तो ये जो दो श्लोक में हम देखा है कि हमें थोड़ा प्रश्न उठते हैं कि राजा अग्निदेव के जो पिता थी वो बहुत बड़े ऊंचे भक्त थे, है ना, और सबसे जो प्रियवत उनके पिता, वो गुरु की बहुत आज्ञाकारी एक शिष्य थे, और करीब इक्ष्वाकु और वैवस्वत मनु, है ना, स्वयंभु मनु ब्रह्मा जी इनके परंपरा से आते हैं। और गुरु नारद मणि के कहने पर, ब्रह्मा जी के कहने पर, उन्होंने भौतिक संसार बिताया बहुत सालों, बाद में विरक्त होकर और राजपाट छोड़कर वो बेटे को सौंपा, फिर वो भगवान की भक्ति में लग गए। पर सवाल ये उठते हैं हमारा मन में कि उनके पिताजी इतने बड़े भक्त थे और उनके बेटा ये क्या, एक पितृलोक जाने के लिए भजन साधन, भजन तो नहीं कर रहे, तपस्या कर्मकांडी कर रहे, है ना, स्वाभाविक। तो देखिए, डॉक्टर का बेटा कभी डॉक्टर नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, है ना, बड़ा मुश्किल के होते हैं, क्योंकि जब पैसे वाले घर के पुत्र होते वो तो बड़ा दिलदार हो जाते हैं, ऐसे आराम में हो जाते हैं। जैसे हमारे कांग्रेशन में हम देखते बड़े बड़े भक्त है ना, उनकी माता पिता, पर उनके पुत्र भक्त नहीं है। तो ये सब कर्म की अनुसार है ना। तो आज की जो श्लोक है 3 नंबर, इसमें राजा अग्निदेव इस प्रकार के, वो उस प्रकार की कामना की है और ब्रह्मा जी की आराधना की कि हमें एक ऐसा संसार चाहिए, स्त्री चाहिए, है ना, पितृलोक जाने के लिए। पितृलोक बोलते हैं स्वर्गलोक, वहां पे जाके देखो, स्वर्गलोक में दो चीज है, दो ही चीज है, ज्यादा चीज नहीं है। एक तो स्त्री है, जितना चाहे भोग करो, कभी थकेगा नहीं, बुढ़ापा नहीं होगा, है ना, शक्तिहीन नहीं। और दूसरा है ऐश्वर्य, बस ये दो चीज। और जैसे प्रभुपाद लिखे, है ना, जैसे पुण्य खत्म हो जाते छीने पुण्य मित्रों के शांति, इस प्रकार है। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल करे, संस्कार। तो वो उस समय लिखे, अगले श्लोक में देखा, सॉरी पूर्व श्लोक में देखा 2 नंबर, कि जब स्वयंभू मनु अपने पुत्र उत्पन्न कर रहे थे तो भी कामुकता भाव में था, इसलिए इस प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, क्लियर ना, समझ गए। तो संस्कार बहुत बड़ा चीज है। आजकल संस्कार बोल के चीज है नहीं, संस्कार है लेकिन लोग मानते नहीं, परवाह नहीं करते। आजकल संस्कार क्या है, मोबाइल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, है ना, लैपटॉप, और क्या क्या है वो, अभी छोटा निकला ना, कैंडल, है ना, कैंडल, है ना, इस प्रकार संस्कार दे रहे। तो बच्चा क्या अच्छा होगा, बच्चा सत्यनाश, बर्बादी होगा। कोई भी बच्चा बोलो बच्ची बोलो, ऐसा ही हो रहे ना संसार में। तो ये संस्कार का एक उपाय लिखा, 28 प्रकार के संस्कार है, गर्भधान संस्कार। ऐसा तो हमारे पूर्व लोग इस प्रकार थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन आजकल ये पूरा सिमिट हो गए, समाप्त हो गए। तो समय कम है, मैं ये सब के ऊपर मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, बहुत ही गड़बड़ी चीज है ना, क्योंकि हम बहुत शुद्ध भक्त है ना, तो हमारे को सहन नहीं होगा, है ना, और हम कह नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे हम विराम देते इस, तो हम थोड़ा आज प्रभु के गोस्वामी गोपाल भट्ट जी के थोड़ा उनकी आविर्भाव, है ना, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उनकी श्रीरंग क्षेत्र जो दक्षिण भारत, वहाँ पे एक कावेरी नदी तीर्थ स्थान में वहाँ पर एक गांव है, उस गांव का नाम है बेलापुरी, बेलागुरी नाम से एक स्थान है। उस गांव में एक रामानुजाचार्य संप्रदाय के एक विद्वान बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार के एक सदस्य थे। वो तीन भाई थे, एक तो प्रबुद्ध भट्ट और उनकी बड़े भाई मल्ला भट्ट, ना नहीं विंकट भट्ट, हाँ विंकट भट्ट वो दूसरे नंबर थे, और तिमल्ला भट्ट बड़े थे, और विंकट भट्ट जो है वो दूसरे नंबर थे, और छोटे भाई ये प्रबुद्ध भट्ट थे। ये तीनों भाई बहुत ही बड़ा रंगनाथ के, भगवान रंगनाथ के पुजारी थे, और बहुत ही विद्वान परिवार थे लोग। तो और उनकी जो प्रबुद्ध छोटे भाई विंकट भट्ट की, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विद्वान पंडित थे, और उस इलाका में बहुत ही उनका नाम था। तो विंकट भट्ट जो है उनकी पत्नी सदम्बा, उनके गर्भ से ये गोपाल भट्ट की उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ सन 1500 में, और कृष्ण पक्ष में हुआ था, कृष्ण पक्ष तृतीय में हुआ था। और जब इनकी जन्म हुआ, बहुत ही तेजस्व, एकदम स्वर्ण कांति बुझाए, बहुत बड़े बड़े थे, और वक्षस्थल भी बहुत गहरे ऊंचे थे। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है, सुंदर विश्लेषण है। तो जब ये उत्पन्न हुए घर में, तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए, और एक महापुरुष जैसे उनकी आकृति है, उनकी रूप माधुरी, उनकी जो सुंदरता से सब मोहित हो गए। और फिर फिर वो धीरे धीरे बड़े होते गए, और जब बड़े होते गए तो उनकी जो चाचा, छोटे चाचा प्रबुद्ध भट्ट, उनके पास उनके पिता वेंकट भट्ट ने छोड़ दिया विद्या सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, अलग अलग शास्त्र अध्याय करने के लिए। तो वो जैसे जैसे बड़े होते गए तो न्याय और अलंकार, अलग अलग जो व्याकरण, इस प्रकार शास्त्र को बहुत जल्दी और तीव्रता से वो अपने जीवन में अमल कर लिया, बड़ा विद्वान बन गए। तभी उनका उम्र था केवल 9 वर्ष थे, 9 वर्ष थे। तो लेकिन उनका जो चाचा थे प्रबुद्ध भट्ट, वो अद्वैतवादी थे। तो उनकी मन में इच्छा थी, ये मेरे जो भतीजा है गोपाल भट्ट, इनको मेरे अंडर में ले लूं और हम दोनों प्रचार करेंगे अद्वैतवाद की। इस प्रकार उनके मन में बहुत अभिलाषा थी, और वो उस प्रकार से उन पर आसक्ति भी थे गोपाल भट्ट के प्रति। लेकिन गोपाल भट्ट जी की जैसे ही शिक्षा पूरा हो गए तो उनकी किस में रुचि आई? भागवत में, भागवत भक्ति में, भगवान की भक्ति में बहुत रुचि आई है। और फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं, और उनकी चाचा थोड़ा नाराजगी हो जाती है कि मेरा इच्छा पूरा नहीं हुआ। तो जब उनका चाचा सुना कि ये भगवान की भक्ति में इनकी रुचि है, तो थोड़ा ईर्ष्या करने लगे। तो ये पाठ को हम छोड़ देते हैं, अभी गोपाल भट्ट जी का प्रसंग में आते। तो जब 9 वर्ष के थे तो उनके पिता वेंकट भट्ट के साथ वो पहली बार जगन्नाथपुरी में जाते हैं। जगन्नाथपुरी में जाने से वहाँ पे भगवान जगन्नाथ को दर्शन करते हैं। दर्शन करते हुए गोपाल भट्ट को बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत ही एकदम अष्ट विकार जैसे हो जाते हैं, सात्विक विकार, पुलक आदि अश्रु बहते जा रहे हैं। तो ये देख के उनके पिताजी बहुत ही समझ गए कि ये एक महान भगवान के भक्त है, आगे चल के भगवान के भक्त बनेंगे, और ये कोई साधारण मेरे पुत्र नहीं है। लेकिन उस समय उन्होंने विचार कर लिया है उनके पिता कि मैं इस पुत्र को भगवान के चरण में नचवर कर दूंगा। इतनी अच्छी बात है ना? ऐसा कष्ट इस संसार में होता तो आज ये जो करुणा वाला जो चीज आई, पूरे संसार को तबाह कर दिया है। भगवान की एक शक्ति है ना? भगवान की शक्ति है बोल के पूरे संसार को नष्ट कर रहे। अगर किसी व्यक्ति का शक्ति, किसी व्यक्ति के माध्यम से भगवान ने रचाया है, तो हमारे इस कंसिस्टाई में बहुत बड़ा एक नुकसान हो गया है, बहुत बड़ा क्षति हो गया है। तो हम तो बद्ध जीव है, हमें दुख तो बहुत लगे, पूरे संसार को दुख लगा है। लेकिन हम शास्त्र के और हमारे जो आचार्यगण हैं वर्तमान, उन्हें हमें समझा रहे हैं कि भगवान की लीला होगी, उनको चाहिए होता इसलिए चले गए महाराज को लेकर। जो भी है, तो मेटेरियल वर्ल्ड वेरी डेंजर है, और स्टेप, एवरी स्टेप इज डेंजर, तो हमें संभाल के रहना है। एक बार एक भक्त पूछे, प्रभु आपको, आप इतने साल से हैं, आपको भगवान मिल गए ना? बोला हाँ भगवान मिल गए। मैं बोला आपको भी मिल गए प्रभु जी? बोले मुझे नहीं मिला, मैं तो पुजारी नहीं हूँ, मुझे नहीं मिला। बोला आपको भी मिला, ये हरिनाम है ना, ये साक्षात भगवान है ना, कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार। तो वो कभी सुना होगा पता नहीं, तो उनको समझाया तो समझ गए। मैं बोला देखिए ये जो हरिनाम है ना, साक्षात भगवान है, हमारे जीवा में 24 घंटा लगा रहते हैं हमारे माइंड में, हमारे हृदय में, हमारी वाणी में, हमारे नेत्र में, हम भगवान के साथ ही है, यही भगवान है, इसको आप जपिए, प्रसन्न हो गए हो। तो खैर, तो गोपाल भट्ट जी जब इस प्रकार साध्वी विकार आ गए, उनका पिताजी समझ गए ये बहुत बड़े, तो बाद में ये महाप्रभु तभी नीलाचल में नहीं गए, जगन्नाथपुरी में थे, तो वहाँ पे महाप्रभु से भेंट नहीं हुई, तो वापस श्री रंगनाथन में आ गए। आने के बाद फिर महाप्रभु बराबर 2 साल के बाद 1910 में 1510 में महाप्रभु की सन्यास दीक्षा हुई है ना, वैशाख मास में, बहुत सुंदर स्थिति में, और उसके बाद ही वहाँ पे नीलाचल में वहाँ पे सर्वम भट्टाचार्य जो स्वर्गलोक के गुरु बृहस्पति, उनको उद्धार किया, उनकी मत को चेंज किया है महाप्रभु। फिर उसके बाद 1511 में 2 साल के बाद वो दक्षिण भारत यात्रा की, और दक्षिण भारत यात्रा करते हुए डायरेक्ट उन्होंने श्रीरंगम क्षेत्र में रंगनाथन वहाँ पे गए, और वहाँ पे कावेरी में स्नान किया। स्नान करने के बाद वो रंगनाथन को दर्शन किया, दर्शन करते हुए वहाँ पे महाप्रभु बहुत कीर्तन भजन किया, नृत्य किया, भाव विभोर हो गए, और वहाँ पे वेंकटेश भट्ट थे, और वो एक कोने में खड़े खड़े महाप्रभु के सब हाव भाव को देख रहे थे, और वो उसको देखकर वेंकटेश भट्ट बहुत प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु को शरीर का कांति से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, और वहाँ पे लाखों हजारों लोग संख्या में भीड़ इकट्ठे थे, तो आखिरी तक वेंकटेश भट्ट सब देखे। देखने के बाद जब महाप्रभु मूर्छित होके जमीन पर गिर पड़े, तब वेंकटेश भट्ट उनके सामने आए। आने के बाद वहाँ के चरण में पतित होकर उनको निवेदन किया कि हे प्रभु, आप मेरे घर में चलिए, वहाँ पे अन्न भिक्षा आज के दिन स्वीकार कीजिए। तो महाप्रभु बड़ा प्रेम से राजी हो गए, उनके साथ चल पड़े। फिर घर में जाने से पहले महाप्रभु ने कावेरी नदी में स्नान किया, करने के बाद गृह में प्रवेश किया। उनके फैमिली बहुत बड़े थे, तो सब लोग उत्मत्त तो हो जाते हैं, और छोटे बालक थे तभी, उनके तभी 11 साल उम्र थे, 9 साल में गए थे, 2 साल के बाद आए 11 साल। तो महाप्रभु को देखती ये गोपाल भट्ट जी बहुत एकदम रति में एकदम मग्न हो जाते, आकर्षित हो जाते हैं। तो महाप्रभु को बहुत सुंदर अलग अलग व्यंजन पकवान बनाया है, और महाप्रभु को सामने उनको अर्पण किया। महाप्रभु बड़ा सुख से, प्रेम से, सुंदर ढंग से उनको ग्रहण किया है। कुछ उच्छिष्ट परे थे, वो सब लोग अपने को सवन किया है सारे परिवार। तो इस प्रकार महाप्रभु की सेवा करने के बाद तो वेंकटेश भट्ट कावेरी से एक कलसी क्या घड़ा भर के जल लाया, जल ला के महाप्रभु के चरण में धोए, वो जल सबको छिड़काया सर पे। छिड़काने के बाद फिर सबने चरणामृत हिसाब से ग्रहण किया है, और आखिर में वो चरणामृत जब गोपाल भट्ट को दिया, गोपाल भट्ट जी एकदम प्रेम उद्मत में पालक पागल हो जाते हैं एकदम, और उनकी शरीर जो है एकदम गौरंग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के जैसा कांति युक्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसमें वर्णन है कि ऐसा लगती उस जल में भगवान हमने सारे शक्ति ऐश्वर्य सब कुछ दे डाले हैं, और जो पीकर
गोपाल भट्ट की सुंदरता भर जाते हैं। तो इस प्रकार वो गोपाल भट्ट एकदम भाव विभोर हो जाते हैं और वो देख के महाप्रभु को बड़ा आश्चर्य लगते हैं, कितने छोटे भक्त बच्चे थे, इतने उनमें वो भक्ति है। फिर महाप्रभु जब वो शान हो जाते थोड़ी देर में बाद, गोपाल भट्ट जो है महाप्रभु के चरण में पतित हो जाते हैं। हो जाने के बाद महाप्रभु अपने चरण जो है उनके सर पर रख देते हैं और जैसे ही सर पर रख देते हैं पूरा कृष्ण भक्ति में अपलावित हो जाते हैं, पूरे डूब जाते हैं, पूरा कृष्ण भक्ति संचित हो जाते हैं उनके जीवन में। फिर महाप्रभु बोले, अभी आपका कोई तकलीफ नहीं, आप मुक्त हो गए हैं, आप जो है मुक्त होकर समय आने पर आपको सब बताया दिया जाएगा और वो हिसाब से आप सारे कार्य करोगे। और ये सब देख के उनके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर महाप्रभु अभी विदा लेने के लिए आग्रह कर रहे कि हमें विदा दीजिए, वेंकटेश भक्त को बोल रहे, लेकिन वेंकटेश भट्ट वो महाप्रभु के चरण में पतित होकर गिर पड़ते हैं और बड़ा विनती होकर कह रहे, हे प्रभु आप ये चातुर्मास के समय हो गया है, आप यहाँ पे आप निवास कीजिए 4 मास और मेरे घर में रहकर आप कृष्ण कथा, कृष्ण रूप लीला गुण वर्णन कीजिए, जो करके हमारे परिवार को आप उद्धार कीजिए, है ना, और हमारे में सब में कृष्ण भक्ति की संचार हो। तो जब इस प्रकार विनती की तो महाप्रभु बड़ा सुंदर से उनको स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है। तो ये जब उनके परिवार देखा कि महाप्रभु 4 महीना यहाँ पे रहेंगे, सारे परिवार खुशी से जम उठे, ऐसे लग रहे कि वो लोग इस संसार में नहीं है, साक्षात को लोग वृंदावन में है ना, वो लोग निवास करे भगवान के साथ। इस प्रकार सबके मन में इस प्रकार भाव जाग उठे हैं। और गोपाल भट्ट तो बहुत उछल कुचल मार रहे हैं, क्योंकि वो महाप्रभु से इतनी आकर्षित हो जाते हैं कि उनके बिना उनका जीवन सुन्न है ना, सुन्न ही तब जगत सर्वम गोविंद बिरायना ऐसे प्रकार हो गया। तो फिर गोपाल भट्ट उनकी रोज सेवा करने लगे, रोज और रोज पात्रकाल में उठकर और वेंकट भट्ट के साथ कावेरी में स्नान करने जाते, करके फिर नगनाथ उनकी दर्शन करके नित्य कीर्तन भजन करके फिर आ जाते हैं। इस प्रकार वो घर में रहकर और गोपाल भट्ट को अपने नवद्वीप नदिया के लीला उनकी भक्त की गुणगान ये सब उनको सुनाते थे, तो उनको इतना अच्छा लगा गोपाल भट्ट को। तो उनको बहुत लालसा हुई और वो थोड़ी देर बाद सोचने लगे गोपाल भट्ट कि ये विधाता कैसे रे, मुझे नदिया से छोड़कर कहाँ जन्म दिया है, मुझे तो प्रभु के नवद्वीप लीला नदिया की लीला में स्थापित होना चाहिए था। विधाता को इस प्रकार थोड़ा कोसते हैं मन में और बड़ा उस लीला को वो आस्वादन करने लगे मन मन में। तो इस प्रकार होने के बाद और उनके घर में हजारों लाखों लोग रोज आते थे महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, और सब लोग बोलते थे आप परिवार बड़ा भगवान भाग्यशाली हैं, जो साक्षात चैतन्य महाप्रभु आपके परिवार में हैं, आपके साथ हैं। इस प्रकार बड़ा अच्छा से गुजर रहे थे, गुजारते हुए और उनकी जब उनके पहले जो 9 वर्ष थे उनकी उपनयन संस्कार भी हो गया था, है ना, ब्राह्मण दीक्षा हो गए थे, उसके बाद वो जगन्नाथपुरी गए थे। तो फिर महाप्रभु उनको शिक्षा देने लगे कि आप जो है, अभी मेरा चतुर्मास पूरा होने को है, मैं थोड़ा संक्षिप में बता रहा हूँ, है ना, बहुत बड़ा ये लीला है, मेन मेन चीज को बता रहा हूँ। कितने बजे प्रभु अभी समय हो गया? 5 मिनट है, 5-10 मिनट चलते आगे पीछे। तो इसलिए मैं भागवत ज्यादा कहा नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा बताएंगे, इससे हमारा शुद्धिकरण होगी। देखिए ये जो लीला है गोपाल भट्ट और महाप्रभु के, एक गुरु और एक भगवान दोनों एकत्र के रूप में उनकी साथ लीला हुई है, है ना। गोपाल भट्ट के ऊपर इतने महाप्रभु प्रसन्न थे और इतने करीब थे, हमेशा उनके पास, जैसा एक पक्षी है उसमें लिखते हैं कि एक जो मादा पक्षी एक बच्चे को पालते हैं ना, अपने साथ में रखते हैं, वैसे महाप्रभु गोपाल भट्ट को अपने पास में रखते थे 4 महीना। और गोपाल भट्ट बड़ा प्रेम से रात दिन सुबह शाम खाते पीते नहीं थे, महाप्रभु को देख के अपना जीवन गुजारा करते थे, इस प्रकार उसमें विश्लेषण है। तो जब जब इस प्रकार 4 महीना होने को है तो सब लोग दुखी हो जाते हैं, विशेष करके वेंकट भट्ट। उसमें ऐसा वर्णन है कि वेंकटेश भट्ट वो भगवान के सखा रूप में, सखा रूप में आदान प्रदान, कभी हास्य उल्लास, कभी उनके साथ हंसी मजाक, इस प्रकार बर्ताव होते थे। तो वो समाप्त हो जा रहे, बड़ा मन दुखी हो जाते हैं। तो एक दिन अचानक गोपाल भट्ट भी समझ जाते हैं कि पिताजी इतना हंस उल्लास थे, अचानक क्यों ऐसा हो गया, मलिनता हो गया। तो फिर समझ जाते महाप्रभु भी हमारे से दूर हो जाएंगे, 4 महीना गुजर जाएंगे। तो फिर महाप्रभु वेंकटेश भट्ट को निवेदन कर रहे कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अभी नीलाचल जगन्नाथपुरी में जाना है, और भी मुझे सेवा है। तो फिर वो कुछ बोल नहीं पा रहे, उसका अंदर दिल फट रहे, एकदम हृदय फटते जा रहे हैं और अंदर रोते रह रहे कि उसका बुली बंद हो गया, उसका शक्तिहीन हो गया और वह भी गिरी पड़ेंगे। तो फिर वो अचानक महाप्रभु के निवेदन के बाद वेंकटेश भट्ट उनके चरण में गिर पड़ते हैं और बोलते हैं कि आप तो स्वयं भगवान है, स्वयं प्रभु है, साक्षात परम ब्रह्म है, आपको कौन रुका सकते हैं। पर फिर विदा लेते हैं, उनके साथ सब लोग जाते हैं परिवार के रास्ते तक। फिर गोपाल भट्ट वो बोले मैं भी महाप्रभु के साथ हमेशा के लिए जाना चाहता हूँ। फिर महाप्रभु उनको बोले नहीं, जब समय होगा आपको मैं बुला लूंगा, आप घर में रहिए, माता पिता की अच्छा से सेवा कीजिए, है ना, जब तक माता पिता आपके पास रहे आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और आपके द्वारा उनको कुछ गुह्य बात बताया, बोले देखो मेरे वृंदावन में बहुत दुर्लभ रत्न है रूप सनातन, समय पर उनके पास आपको बुला लूंगा और वो आपको सब मेरे जीवन के बारे में, मेरे गुहे अखति के बारे में वो बताएंगे और आपके शिष्य को लेकर आप पूरे संसार में प्रचार करोगे, है ना। तो इस प्रकार उनको एक गुहे बात बोले, तभी वो शांत हुए गोपाल भट्ट। फिर घर में आए, महाप्रभु के आदेश को सिरेधाई करके उनकी माता पिता को सेवा किया और 20 साल के बाद उनकी माता पिता जब इस संसार से मतलब धाम प्रायण हो जाते हैं, तब उनको बड़ा खुशी आ रहे और उनको मुक्त मिल जाते कि मैं अभी वृंदावन जाऊंगा, जगन्नाथपुरी जाऊंगा, नीलाचल में महाप्रभु के चरण में पहुंचूंगा। तो फिर वो निकल पड़ते हैं। उस समय कोई गाड़ी वगैरह नहीं था, चलते चलते निकल पड़ते हैं और फिर आखिर में वृंदावन पहुंच जाते हैं। वहां पे पूर्वदनन सरस्वती उनसे पहले भेंट होते हैं, फिर वो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि महाप्रभु पहुंचने से वहां पे जब पहुंचे रूप सनातन को, सारे उनके पार्षदों को गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बहुत विस्तार रूप से वर्णन किया है। तो इसलिए सिर्फ उनको देखा नहीं कोई, पर उनकी जीवन चरित्र से सब परिचित थे। तो जब परमानंद सरस्वती से मिले तो बड़ा प्रसन्न हो जाते, बोले हाँ हम लोग सब आपके बारे में सुने हैं, केवल आपका दर्शन अभी हुए हैं। तो उनको बड़ा प्रेम से रूप सनातन के पास ले जाते हैं और बोले ये आपके छोटे भाई जैसा, इनको आप परवरिश कीजिए। फिर वहाँ पे जब उनके अंडर में हो गए तो सारे रूप सनातन जो हैं ये महाप्रभु के संदेश भेजा कि आपके गोपाल भट्ट जो आपके प्रेमी शिष्य वहाँ पर आ पहुँचे हैं। तो महाप्रभु ये सुनकर बहुत ही खुशी हो जाते हैं। महाप्रभु उनके लिए अपने डोरी कॉपिन और बहिर्वस्त्र और एक आसन वो भेंट में उनको दान दिया आदमी के द्वारा, शिष्य के द्वारा। तो जब वो एक खत भी देते हैं, जब आके उसका नाम है गोपाल कवि, गोपाल कवि वो ब्राह्मण के हाथ से भेजा था। और फिर जब इनको वो सारे चीज प्रदान करते हैं, गोपाल भट्ट जी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते कि ये जो कपिन है, ये अंगवस्त्र है, ये आसन है, वहाँ पर वो आपके लिए ये भेजा है और ये खत लीजिए। तो खत करा तो उनको इतनी खुशी हो रही कि खुशी से मरे वो बेहोश हो जाते हैं और खत पढ़ नहीं पा रहे कि महाप्रभु मुझे खत लिखे हैं, तो महाप्रभु मुझे भूला नहीं, मुझे याद रखे हैं। और वो पागल की तरह हो जाते हैं। फिर खत को पढ़ते हैं और उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ रहते हैं है? और फिर उसमें आखिरी में बताते कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप मेरे आदेश को पूरा करके है ना, और इस मेरे भक्त के चरण में आश्रय लिया है, तो मेरा सदा आशीर्वाद आपके सर पे रहेंगे। और फिर वो कॉपिन भी लिया और अंगवस्त्र लिया, लेकिन आसन को लेना नहीं चाहा क्योंकि उसमें लिखते हैं कि वो जो महाप्रभु वो एक कौन सा लकड़ी से बना हुआ है, दारू बम्बा ऐसा कुछ लकड़ी से वो काट के है, वो जो लकड़ी से बना हुआ वो आसन है। आसन बोलता ऐसा कब्रे का नहीं है, लकड़ी से बना हुआ। महाप्रभु उसमें बैठकर वो कथा करते थे, दीक्षा देते थे, वो आसन उनको भेंट किया, ऐसा उसमें वर्णन है। तो फिर रूप हाँ फिर उसमें लिखा था खत में कि देखो मेरा एक अंश आएंगे श्रीनिवास आचार्य, उनको आपको दीक्षा देना है उस आसन में बैठकर। लेकिन सब आदेश को अपने मन में लिया, लेकिन जब श्रीनिवास आचार्य आए, उनके भेंट हुआ और दिखा श्रीनिवास आचार्य बहुत मान भक्त है, उनको कैसे दीक्षा दें है ना। लेकिन महाप्रभु के आदेश और रूप सनातन बोल रहे नहीं, गुरु की आदेश है, साक्षात परम ब्रह्मा की आदेश है, आपको ये सिखाना ही पड़ेगा। तो फिर बाद में उस आश्रम में बैठ के हैं और उन्होंने दीक्षा देते हैं श्रीनिवास आचार्य के। श्रीनिवास आचार्य बाद में श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम और समानंद ये लोग बड़ा एक पिलर बन जाते और पूरे ब्रज में कीर्तन भजन है ना प्रचार करते थे एकदम। तो खैर ये तो अलग पाठ है। उसके बाद गोपाल भट्ट को, गोपाल भट्ट को सपने में आए थे महाप्रभु कि देखो आपको शालिग्राम शिला की पूजा करना है, और ये शालिग्राम शिला जो है ये राधा रमन जी के रूप में प्रकट होंगे, ऐसा उनको पहले बता दिया था। और उसी आशा में उन्होंने गुजारा करते थे, भजन कीर्तन करते थे, करते करते फिर वो दिन आया, फिर उन्होंने निकल पड़े सारा नहीं थोड़ा डिटेल्स में डायरेक्ट घंटे की में। तो फिर शरण सहारन सहारा सारा सराहन सराहनपुर होकर जाते जाते वहाँ पे पश्चिम उत्तर भारत की ओर जाते जाते वहाँ पे एक गांव आते हैं, वहाँ पे एक विद्वान ब्राह्मण मिलते हैं, उनकी नाम है दामोदर प्रसाद ऐसा कुछ नाम उनका। वो ब्राह्मण उनको जब देखते तो बड़ा उनकी तेजस्वी से आकर्षित हो जाते, उनके घर लेके जाते, घर ले जाकर परिवार से संबोधन करते, उनके एक पुत्र थे छोटे गोपीनाथ उनसे मिलाते हैं और उनको खान पान की सब देते हैं। फिर अगले दिन फिर आगे जाते हैं कर्ण कनिकपुर होकर वहाँ पे नेपाल में कंटकी नदी उद्गम में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे वो स्नान करने जाते हैं भगवान को, पहले नदी को वंदना किया, अर्चना किया, प्रणाम किया, करने के बाद जब जल में उतरे तो पहले अपने अंजलि में जल लेकर सूर्य नारायण को अर्पण किया, करते हुए जब वो डूब मारा पानी में डुबकी लगाया, फिर उनको एक हाथ में शालिग्राम शिला है दामोदर के रूप में, राधा दामोदर दामोदर शिला कहा गया उसको, दामोदर शिला। और भी 11 अलग अलग छोटे बड़े शिला को लेकर उन्होंने आए हैं वृंदावन में, आके सीधा निधिवन में जो राजस्थली है वहाँ पे एक बटवृक्ष के नीचे पत्ते के है ना पर्ण कुटीर बनाया, उस कुटीर में वो साधन भजन करने लगे। और बटवृक्ष में एक थैला बनाया, वो पिटारी बोलते उसको, पिटारी में शालिग्राम शिला को रखते हैं, रोज पूजा पाठ जो भी कंदमूल मिलते हैं वो सब चढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार वो करते करते और उनको महाप्रभु की याद आया कि महाप्रभु बोले थे शालिग्राम शिला राधारमन से प्रकट हो जाएंगे, हैं उनकी विस्तार रूप हो जाएंगे। ऐसा होते होते चिंता करते हुए और दूसरा दिन जब वो सुबह उठकर नहा धोके यमुना में जब शालिग्राम की पिटारी खोल के भगवान को पूजा करने जाते, तब देखते बहुत सुंदर एक राधा रमन जी के विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जय श्री राधा रमन जी की जय। तो ये कथा और है आगे है, तो आप लोग की इच्छा बताइए, आगे जारी रखो, 9-10 हो गया, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, मैं तो काट छाट के थोड़ा सा जोर जोर के बता है, तो मुझे अभिशाप मत दीजिएगा मैं अभी नया जन्म लेके आए, पिछले 4 महीना पहले मेरा बहुत ही सच्ची मेरा एक पूर्ण जन्म मिला है। तो मेरा एक साथ हार्ट अटैक और ब्रेन हैमेज का वो हो गया था, पूरा एक साइड गिर गया था, टेरा हो गया था, बहुत मुश्किल से बड़ा महाप्रभु की कृपा से उनके शायद चरण में था मायापुर में, जोगपीठ के पास में ही था मैं, तो वहाँ पर भक्ति विधान में तुरंत ले जाके हमें बड़ा अच्छा से इलाज करा के, तो सब लोग हैरान हो गया कि इतना जल्दी कैसे ठीक हो गए। तो मैं हरे कृष्ण भी बोलने को नहीं हो रहा था, इतना हालत हुआ है। इसलिए कह रहा हूँ मुझे अभिशाप मत दीजिए, छोटा थोड़ा समय ज़्यादा लिया है क्योंकि थोड़ा दिन बाकी है, अभी तेज शरीर जाएगा, थोड़ा नाम लेके लेके जाएंगे आप सबकी कृपा कृपा है ना। तो कभी और करेंगे इसकी कथा आगे, तो मैं यहाँ पे विराम दूँ जी, तो मैं यहाँ पे विराम देता हूँ कथा को। आप लोग पढ़िए आज, है ना, बहुत सुंदर लीला, बहुत विस्तार से है, तो राधा रमन जी गोपाल भट्ट की कृपा मिल जाएंगे। और इस प्रसंग में एक चीज बहुत अच्छा है कि एक गुरु, स्वयं गुरु और एक भगवान के रूप को निभाया है चैतन्य महाप्रभु, और गोपाल भट्ट जी एक आदर्श एक आपका करे शिष्य के रूप में अपने जीवन को नछावर कर दें, ऐसा हम सबको होना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे, हम जो भी है इस कोरोना से उभर कर हमें भगवान के नाम पर रुचि देना है। और उनकी तो बहुत गुण था गोपाल भट्ट के, ऐसा वो गायक थे ना, ऐसा वो पंडित थे, एक एक श्लोक को अलग अलग पुकार के गाते थे, सब पागल हो जाते थे, उनकी इतनी वो था सब पराक्रम। तो उनकी थोड़ी भी एक, हम तो देखिए हम कभी सुधारने वाला नहीं है, हैं तो थोड़ा तो हम नहीं सॉरी हम बदलने वाला नहीं है, थोड़ा सुधार सकते हैं, हैं तो हम उनकी चरित्र को पढ़ के थोड़ा एक अंग सुधर जाए तो हमारा कल्याण। श्रील प्रभुपाद की जय, गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभा महा महासव की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदी आप सब अच्छा भक्त वृंद की जय। मुझे द्वारा जो भी गलती हुआ त्रुटि हुआ प्लीज क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।